ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 9 फरवरी 2025 के लिए है। विषय आत्मा, स्वर्णपथ, यूहन्ना। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान भजन संहिता। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझा दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पाथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनियों ही की ओर फेर। मेरी आंखों को व्यर्थ वास्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चला। देख, मैं अपने उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धाम के कारण मुझको जिला। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा, मैं तेरा ही शरण आगट हूं, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा, मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा, मैं केवल तेरे ही धाम की चर्चा किया करूंगा। यशाया। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो अन्य जातियों के लिए न्याय प्रगत करेगा। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए निरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय झुकाएगा, वो ना थकेगा और ना ही आओ छोड़ेगा, जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर सिथर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात चाहेंगे। ईश्वर जो आकाश का सर्जने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस युग नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं। और जब एक से कहता हूं कि जा, तो वह जाता है, और दूसरे से कि आ, तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं कि ये कर, तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। यूहन्ना। सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो मुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरुण जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सौता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, वो जल मुझे दे कि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्य अद्विकता है, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलम में, परंतु वो समय आता है, वरुण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। रोमियो, सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरुण आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापा में शरीर के समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरुण आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मा धाम के कारण जीवित है। परंतु यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। थसलिंकियों, आत्मा को ना बुझाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों का अर्थ है कि ईश्वर सब कुछ है। इससे ये पता चलता है कि ईश्वराय मन और उनके विचारों के अलावा किसी भी चीज में वास्तविकता या अस्तित्व नहीं है। शास्त्र ये भी घोषणा करते हैं कि ईश्वर आत्मा है, इसलिए आत्मा में सब कुछ समान जैसे है और कोई मतभेद नहीं हो सकता। सब कुछ जीवन है और कोई मृत्यु नहीं है। भगवान के ब्रह्मांड में सब कुछ उसे व्यक्त करता है। आत्मा सभी चीजों का जीवन पदार्थ और निरंतरता है। सवाल, होने का वैज्ञानिक कठान क्या है? उत्तर, सामग्री में कोई जीवन सत्य बुद्धिमता नहीं, ना ही पदार्थ है। सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्तियां हैं, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है, पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है। इसलिए आदमी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। आत्मा की सर्वोच्चता वो नींव है जिस पर यीशु ने निर्माण किया। उसका उत्कृष्ट सारांश प्रेम के धाम की ओर संकेत करता है। यीशु ने मसीही युग में सामस्त मसीही धर्म, धर्मशास्त्र और उपचार के लिए मिसाल कायम की। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। यशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दोषन से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए कारण सही ढंग से निर्देशित शारीरिक समझ की त्रुटियों को ठीक करने का कार्य करता है। लेकिन पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक प्रतीत होगी, जैसे सोते हुए सपनों के अनुभव वास्तविक लगते हैं। जब तक कि मनुष्य के शाश्वत सिद्ध भाव का विज्ञान वैज्ञानिक की अखंड वास्तविकता के साथ उनके भ्रम को नहीं तोड़ता। महान आध्यात्मिक तथ्य को सामने लाना चाहिए कि मनुष्य पूर्ण है, अमर नहीं। हमें हमेशा अस्तित्व की चेतना को धारण करना चाहिए और जल्द ही या बाद में मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से पाप और मृत्यु पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की अमरता के प्रमाण अधिक स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक विश्वास को छोड़ दिया जाता है और होने के अमर तत्वों को स्वीकार किया जाता है। चेतना एक बेहतर शरीर का निर्माण करती है जब सामग्री में विश्वास की जीत होती है। आध्यात्मिक समझ से भौतिक विश्वास को ठीक करें तो आपको नए सिरे से बनाएगी। आप फिर से ईश्वर को नाराज करने के अलावा कभी नहीं डरेंगे और आप कभी भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि हृदय या शरीर का कोई भी हिस्सा आपको नष्ट कर सकता है। सत्य की मांगे आध्यात्मिक हैं और मन के माध्यम से शरीर तक पहुंचती हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं के सर्व उत्तम व्यक्तिकार ने कहा कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आध्यात्मिक कार्य एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना है। अन्य सभी से अधिक आध्यात्मिक कारण मानव प्रगति से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये युग इस विषय पर विचार करने, आत्मा की सर्वोच्चता पर कुछ विचार करने तथा कम से कम सत्य के वस्त्र के छोर को छूने के लिए तैयार है। मनुष्य का वर्णन विशुद्ध रूप से भौतिक या आध्यात्मिक दोनों के रूप में, लेकिन किसी भी मामले में उसके संगठन के आधार पर एक पेंडोरा बॉक्स है, जिसमें से सभी बीमारियां निकल गई हैं, विशेष रूप से निराशा है। सामग्री जो दिव्य शक्ति को अपने हाथों में लेती है और एक निर्माता होने का दावा करती है, एक कल्पना है जिसमें बुत अपारस्थि और वासना समझ द्वारा इतनी स्वीकृत हैं कि मानव जाति ने अपनी नियुक्त छूट को पकड़ लिया है। भौतिकता के आध्यात्मिक विपरीत के विवेक के माध्यम से, यहाँ के मसीह सत्य के माध्यम से, मनुष्य दिव्य विज्ञान की कुंजी के साथ स्वर्ग के द्वार को फिर से खोल देगा, जो मानव मान्यताओं ने बंद कर दिया है, और खुद को निष्कलिंक, ईमानदार, शुद्ध और स्वतंत्र पाएगा। वो अपने जीवन या मौसम की संभावनाओं के लिए पंचांगों से परामर्श लेने की आवश्यकता महसूस ना करके ये जानने के लिए कि वो कितना आदमी है, मस्तिष्क विज्ञान का ध्यान करने की आवश्यकता को महसूस ना करके। मनुष्य साहित्य ब्रह्मांड पर मन का नियंत्रण अब एक खुला प्रश्न नहीं है, बल्कि विज्ञान है। यीशु ने बीमारी और पाप को ठीक करने और मृत्यु की नींव को नष्ट करके दिव्य सिद्धांत और अमर मन की शक्ति का वर्णन किया। अपनी उत्पत्ति और प्रकृति को भूलकर मनुष्य स्वयं को पदार्थ और आत्मा का संयुक्त रूप मानता है। उसका मानना है कि आत्मा को पदार्थ के माध्यम से छान लिया जाता है, तंत्रिक पर ले जाया जाता है, पदार्थ के लिए संचालन द्वारा निष्कासन के लिए उजागर किया जाता है। भावतिक, नियुक्त, आध्यात्मिक, हाँ अनंत मन की छवि गैर बुद्धि के अधीन है। शरीर और आत्मा के बीच कोई सहानुभूति नहीं है जितनी के बलियाल और मसीह के बीच है। पदार्थ के तथाकथित नियम कुछ और नहीं बल्कि झूठी मान्यताएं हैं कि बुद्धि और जीवन वहां मौजूद हैं जहां मन नहीं है। ये झूठे विश्वास सभी पापों और बीमारियों का कारण है। विपरीत सत्य की बुद्धि और जीवन आध्यात्मिक हैं, कभी भौतिक नहीं। पाप, बीमारी और मृत्यु को नष्ट करते हैं। मनुष्य का आध्यात्मिक व्यक्ति तत्व कभी गलत नहीं होता। ये मनुष्य के निर्माता के समानता है। पदार्थ नश्वर को वास्तविक उत्पत्ति और होने के तत्वों से नहीं जोड़ सकता, जिसमें सभी को समाप्त होना चाहिए। ये आत्मा के विचारों को स्वीकार करने से ही है जो पदार्थ के दावों को खारिज करता है कि नश्वरता मृत्यु डर को दूर कर सकती है और उस आध्यात्मिक लिंक को खोज सकती है जो मनुष्य को देवी समानता में स्थापित करता है, जो अपने निर्माता से अविभाज्य है। एक ईश्वर के पास और आत्मा की शक्ति का लाभ उठाने के लिए आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध है, मांस और आत्मा काम में अधिक एकजुट नहीं हो सकते। सच्चाई बुराई से मेल खा सकती है। अड़ियल या आधे अधूरे पड़ पर बैठना या आत्मा और भावतिक सत्य और त्रुटि के साथ समान रूप से काम करने की उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। एक तरीका है ईश्वर और उसका विचार, जो आध्यात्मिक होने की ओर ले जाता है। शरीर की वैज्ञानिक सरकार को मन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। शरीर पर किसी अन्य तरीके से नियंत्रण हासिल करना असंभव है। इस बुनियादी बिंदु पर डरपोक रूढ़िवाद बिल्कुल बेवजह है, क्योंकि सत्य पर कट्टर अपांति निर्भरता के माध्यम से वैज्ञानिक उपचार शक्ति का एहसास किया जा सकता है। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावनाओं और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के समर्थ्य में विरोधी का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।